بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین، السلام علیکم۔ ماہ رجب المرجب کی آمد آمد ہے۔ آنے والی شب فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کی شب ہے۔ اس پر مسرت موقع پر آپ سب کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں عام انتخابات، جس کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان میں، یعنی 11 مئی 2013 کو، پاکستان کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے پورے ملک میں ووٹ ڈالے گئے، اور یہ انتخابات، یہ الیکشن، پولنگ کا یہ عمل خوف و ہراس اور دہشت گردی کے سائے میں انجام پایا۔ پاکستان سے ملنے والی اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ پولنگ اسٹیشنوں پر رش دیکھنے میں آیا اور لوگوں میں کافی جوش و ولولہ بھی پایا گیا، اور اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ عوام نے کم از کم دہشت گردوں کے عزائم کو مسترد کرتے ہوئے اپنے فیصلے سنائے ہیں جو کل سامنے آئیں گے۔ بہرحال، پاکستان میں جہاں خوف و ہراس کے سائے میں ووٹ ڈالے گئے، وہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کراچی کے تعلق سے ایک بیان جاری کیا ہے، یقینی طور پر جو پاکستان کے انتخابی عمل پر کہیں نہ کہیں اثر انداز ہو سکتے ہیں، یا انتخابی نتائج پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پولنگ کا وقت 1 گھنٹے کم از کم بڑھا دیا گیا تھا، اور بعض جگہوں پر تو بعض جماعتوں نے پولنگ کا وقت، مثلا کراچی میں ہی پی ٹی آئی نے رات 12 بجے تک وقت بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا، تو جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ لوگوں میں جوش و خروش کافی پایا جا رہا ہے۔ لیکن اب جبکہ انتخابی عمل یا پولنگ کا عمل مکمل ہو چکا، انتخابی عمل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پولنگ کا عمل اور رائے دہی کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا، اور بعض جگہوں پر شانگلہ جیسے علاقوں میں نتائج، یعنی ابتدائی رجحان بھی سامنے آنے لگے ہیں، تو یہ کہنا ہوگا کہ کل 12 مئی کا طلوع ہونے والا سورج پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک نیا پیغام لے کر آئے گا۔ بہرحال، ہماری گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور دیگر اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
پاکستان میں عام انتخابات کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ پولنگ کا وقت شروع ہوتے ہی صدر زرداری، آرمی چیف اور چیف الیکشن کمشنر سمیت اعلی عہدیداروں اور رہنماؤں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ اطلاعات کے مطابق پولنگ اسٹیشنوں پر رائے دہندگان کی لمبی قطاریں دیکھی گئیں، اور طالبان کی دھمکیوں کے باوجود لوگ اچھی تعداد میں ووٹنگ کے لیے نکلے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن اشتیاق احمد خان نے 80% تک انتخابی ٹرن آؤٹ کی توقع ظاہر کی تھی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک کی تاریخ میں پہلی بار مرد اور خواتین کے ووٹ الگ الگ گنے جائیں گے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن اشتیاق احمد خان نے اسلام آباد میں پولنگ اسٹیشنز کا دورہ کیا اور انتخابی عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ووٹ ڈالنے کے لیے آنے والوں کی تعداد کو انتہائی حوصلہ افزا قرار دیا۔ دریاسنا ملک کے مختلف علاقوں سے تشدد کے واقعات کی رپورٹیں بھی ملی ہیں۔ حساس شہر کراچی میں طالبان نے ایک انتخابی امیدوار پر حملہ کیا، جس میں کم از کم 11 لوگ مارے گئے اور 36 زخمی ہو گئے۔ کراچی میں صوبائی اسمبلی کے حلقے PS 58 اور PS 59 کے سلسلے میں کراچی کے علاقے پہلوان گوٹ میں واقع پولنگ اسٹیشن میں 100 سے زیادہ افراد اچانک داخل ہو گئے۔ انہوں نے عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا اور خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی اور انہیں بالوں سے پکڑ کر دھکے دیے۔ حملہ وروں نے بیلٹ پیپرز کے باکس چھین کر بیلٹ پیپر پھاڑ دیے اور بیلٹ باکس اٹھا کر فرار ہو گئے۔ حملہ وروں کی جانب سے شدید نوعیت کی فائرنگ بھی کی گئی، جس سے خوف زدہ ہو کر لائن میں لگے ووٹرز گھروں کو لوٹ گئے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی نے کراچی کے تمام حلقوں سے اپنے امیدوار دستبردار کرنے کا اعلان کیا۔ جماعت اسلامی کے امیر کراچی محمد مہنتی نے ہنگامی پریس کانفرنس میں کہا کہ کراچی میں انتخابی عمل سے باہر رہنے کا ہم اعلان کرتے ہیں، اور اس عمل کے خلاف پیر کے روز پرامن احتجاج بھی کیا جائے گا۔ आज का दिन पाकिस्तान के लिए इंतहाई फैसला कुन दिन है। पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम तकरीबन 9.25 करोड़ रजिस्टर्ड वोटरों के जरिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान का इंतखाब कर रहे हैं। ये मुंतखब अरकान अगले 5 साल के लिए वफाक और सूबों की हुकूमतें तश्कील देंगे। तालिबान की धमकियों की वजह से ये अंदेशा था कि आखिरी लम्हात में कोई ऐसा वाकया न हो जाए जिससे इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल से दोचार हो जाए। ये अंदेशा बेबुनियाद नहीं था क्योंकि इंतखाबी मुहिम के दौरान इंतहा पसंदों के हमलों में 100 से ज्यादा अफराद मारे गए। इस सूरत हाल को देखते हुए 70,000 फौजी जवानों को तैनात किया गया था, ताहम उन्हें पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। इसके अलावा पुलिस और रेंजर्स के अहलकार भी बड़ी तादाद में तैनात किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ने राय दहंदगान की सहूलत और सलामती का ख्याल रखते हुए मुल्क भर में मजमूई तौर पर 69,875 पोलिंग स्टेशन कायम किए थे, जिसके नतीजे में कोई भी वोटर पोलिंग स्टेशन से 2 किलोमीटर से ज्यादा के फासले पर नहीं था। 15,681 पोलिंग स्टेशनों को हसास करार दिया गया था, जिनमें 8,439 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए थे। इन पोलिंग स्टेशनों पर CCTV कैमरे लगाए गए थे। इतवार को ये वाजे हो जाएगा कि अवाम ने क्या फैसला किया है। सर्वे रिपोर्टों में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ को मजबूत पोजीशन मिलने के इम्कान जाहिर किए गए हैं, ताहम कुछ तजिया निगारों का कहना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ इतिहाद भी कमजोर नहीं कहा जा सकता। मुख्तलिफ तजियों में हंग असेंबली के इम्कान भी जाहिर किए गए हैं।
यहाँ ये तो पेशिन गोइयाँ थी, लेकिन अब से चंद घंटे के बाद ये पेशिन गोइयाँ हकीकत का रूप धार लेंगी और ये मालूम होगा कि हकीकत में कौन इकतदार में आ रहा है और कौन इकतदार से बाहर हो रहा है और कौन अपोजिशन में बैठेगा और कौन हिजब इकतदार की बेंचों पर बैठेगा। जाहिर है कि जब 12 मई का सूरज तुलू होगा तो किसी के खेमे में शादियाने बजेंगे और खुशियाँ मनाई जाएंगी, खा वो जमाती बुनियादों पर हो या इनफरादी, तो किसी के खेमे में बहरहाल अफसरदगी होगी। वहाँ भी कोई इनफरादी तौर पर गम और उदास का शिकार होगा, उदासी का, और कहीं जमाती बुनियाद पर भी। बहरहाल चलते हैं इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो, जहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर तर्ज़ निगार जनाब तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी वालेकुम अस्सलाम।
जी 11 मई का सूरज तो तकरीबन गुरूब हो चुका होगा पाकिस्तान में, यहाँ ईरान में तो खैर अभी शाम है, लेकिन क्या पैगाम छोड़कर गया होगा आपके ख्याल में, और कल का सूरज जो तुलू होगा वो क्या पैगाम लेकर आएगा?
लेकिन ये तो पहली बात ये है कि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो आगे चलने के लिए आ गया सामने, यानी 5 साल बाद नॉर्मली तो पाकिस्तान में इससे पहले काम ही होता रहा है कि एक जमहूरी हुकूमत ही खुद इंतखाब कराए और नया जमहूरी सेटअप आए और उसके हवाले इकतदार कर दिया जाए। ये पहली बार हो रहा है और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक संगे मेल की हैसियत रखता है कि मुल्क के अंदर एक बाकायदा जमहूरी तरीके से लोगों को अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्जी की आइंदा हुकूमत बनाने का एक मौका फराहम किया गया। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि पाकिस्तान के इस जमहूरी अमल को इंतहा पसंदों, अस्करियत पसंदों ने रोकने की बड़ी कोशिश की, बड़ी धमकियाँ दी गई, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम और जो हमारे अस्करी फोर्सेस जो हैं उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है और इस मुल्क के इसके साथ साथ मैं फ़ौज को भी कहूँगा कि फ़ौज ने भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलाने के लिए अपनी एक वाज़े हदफ जो है अपना मौक़िफ़ बयान किया है। अदलिया ने भी बड़े एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलना चाहिए, इसी के अंदर से तब्दीली और एक जो जमहूरी तरीका है और आवाम की अदालत फैसला करे कि उनके हुक्मरान कौन होने चाहिए, और अगर जो मौजूदा हुक्मरान उनके बारे में भी जो एक जमहूरी तरीका है आवाम की अदालत उसमें फैसला करे। तो मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत अहम है कि पाकिस्तान के आवाम को आइंदा के लिए 5 सालों के लिए अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से और अपने नज़रियात की बुनियाद पर अपने लोगों को मुंतखब करने का मौका फराहम किया गया है। इस हवाले से पाकिस्तान के तमाम इदारे जो बाइख्तियार हैं, मैं समझता हूँ उनका एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है, और बहुत देर बाद मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लोगों को के अंदर एक एतमाद पैदा हुआ है कि उनका वोट जो है वो यकीनन अपना एक फैसला दिखाएगा। माजी में अगरचे इलेक्शन होते रहे लेकिन बहुत सारे खदशात के साथ लोग वोट डालते रहे कि शायद वोट जो रिज़ल्ट है उस पर कोई ना कोई इदारा मुतासर हो सकता है, लेकिन अब की बार लग रहा है कि वोट जो है लोगों का जो भी फैसला होगा उसी के मुताबिक उनका नतीजा आएगा,
जी
और ये दिन जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी बड़ा अहम है। आज लोगों ने जिस अंदाज से वोट डाले हैं और जिस दिलचस्पी का इजहार किया है, बावजूद इसके कि थ्रेट मौजूद थे कि कुछ हादसे भी हो सकते हैं, धमाके भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा खुद पोलिंग स्टेशंस पे कि इस्लामाबाद में जहाँ मैं गरीब खाना में रह रहा हूँ, मैंने देखा बड़ी दिलचस्पी के साथ लोग आ रहे हैं, और ख्वातीन का भी टर्न आउट मैंने देखा है देहात में बहुत अच्छा है। और इसमें एक जो पॉजिटिव चीज़ ये है कि लोग अब इस पे एतमाद करने लगे हैं कि उनके वोट से यकीनन इस मुल्क में एक तब्दीली आएगी और वो तब्दीली उनके मसाइल को कम करेगी।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा तनवीर हुसैन साहब, और अंदर जाकर गुफ्तगू होगी आपसे मज़ीद पाकिस्तान के हालात के ताल्लुक से। इस वक्त चलते हैं लंदन स्टूडियो, जहाँ पर मौजूद हैं आलमी उमूर और ख़ास तौर पर बरसग़ीर के उमूर के माहिर डॉक्टर इनायतुल्लाह अंद्राबी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि तनवीर हुसैन साहब फरमा रहे थे कि तालिबान और दहशतगर्द तनजीमों की तरफ से तमाम तरह धमकियों और ख़तरात के बावजूद अवाम ने जोश और जज्बे और हौसले और हिम्मत के साथ पोलिंग स्टेशनों पर जाकर अपने हक़ रायदेही का इस्तेमाल किया। बहरहाल कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐलान करेगा कि कौन जमात जीती और कौन जमात हारी, या कौन उम्मीदवार जीता और कौन उम्मीदवार हारा। जाहिर है कि फैसला जमाती बुनियादों पर होगा कि किस जमात को सबसे ज़्यादा वोट मिले और कौन सबसे ज़्यादा कामयाब हुई। यह तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऐलान होगा, लेकिन तालिबान ने जिस तरह से इलेक्शन को सबोताज करने की धमकियां दे रखी थी और कहा था कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, उसके पेश नज़र जिस बड़े पैमाने पर अवाम ने पोलिंग स्टेशनों पर जाकर वोट डाले, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो कुछ भी ऐलान करे, जाहिर है वो वहाँ की जो सियासी सूरत हाल है, जो सियासी सिस्टम निज़ाम है उसके मुताबिक ऐलान करेगा। लेकिन मुझ जैसे लोग तो यही कहेंगे कि असल फतह और जीत पाकिस्तान के अवाम की होगी। क्या मेरे इस ऐलान से आप मुत्तफिक हैं?
जी, इस हद तक तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस हद तक तो मैं मुत्तफिक हूँ कि आवाम का जोश खरोश और उनका भारी तादाद में वोट के लिए जाना ये एक एतबार से पाकिस्तान के निज़ाम के लिए फतह है, यानी जमहूरियत के लिए फतह है, जमहूरी जो सिस्टम है प्रोसेस है उसके लिए फतह है। लेकिन मैं इसको बहुत ही एक रोजी पिक्चर, एक बहुत ही दिल को खुश करने वाली जो पिक्चर है, मैं उसको उस तरह से नहीं समझता जैसे कि आपके जो पाकिस्तान के मेहमान हैं इसको समझते हैं। इसमें मसला यह है कि असल में हमें यानी ज़रा सतहियत से आगे जाना होगा और सतही चमक धमक से हमें असल चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। असल चीज़ तो है रियासत और अवाम की, वो आगे बढ़े, उनकी फलाह बहबूद और उनकी उनकी जो प्रोग्रेस है वो असल चीज़ है। तो ये जमहूरियत है या कहीं पे नहीं है, मसलन चाइना में इस तरह की जमहूरियत नहीं है, दूसरी जगहों पे नहीं है, ये डिफरेंट सिस्टम्स है जो लोगों ने बनाए हैं, और इन सिस्टम्स का मुद्दा मकसद यही है कि हम इज्तमाई उमूर कैसे बेहतरीन अंदाज में चला सकें। इससे कि जब इज्तमाइयत की बात आती है तो वहाँ एक सिस्टम डिवाइस करना पड़ता है कि किस तरह से एक ऐसा हम निज़ाम बनाएं कि हर किसी को अदल इंसाफ, तरक्की, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें मैसर हों। तो जमहूरियत भी एक ऐसा ही निज़ाम है और यहाँ पे ये काफ़ी चीज़ें डिलीवर भी कर रहा है, लेकिन हमें देखना है कि ये जो पाकिस्तान में जो जमहूरी प्रोसेस और ये चीज़ें चल पड़ी हैं तो इनसे क्या कुछ डिलीवर हो रहा है या ये किस तरह की वहाँ पे जो प्रोसेस है। अब इस सिलसिले में मैं मुख्तसरन ये गुजारिश करूँगा, मुमकिन है बाद में इस चीज़ की वजाहत भी हो। مختصراً میں یہ گزارش کروں گا کہ وہاں جو یہ ابھی الیکشن پروسیس ہوا اور کاغذات جمع کرانے کی اور امیدواروں کا تعین اور کسی کو ڈسکوالیفائی کرنا کسی کو کوالیفائی کرنا، تو یہ پروسیس بجائے خود اس پہ کافی سوالیہ نشانات ہیں، بجائے خود اس پہ جو ہے کافی لوگوں نے اس پہ اعتراضات اٹھائے، اور یہ ٹھیک ہے کہ آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، لیکن میری گزارش ہے کہ جب آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے تو آپ مہمان کے سامنے اچھی اچھی پانچ چھ پکوان آپ اس کے سامنے رکھیں، ہر کوئی پکوان بجائے خود اچھا ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ سڑی ہوئی دال سڑا ہوا گوشت یہ اس کے سامنے رکھیں اور پھر اس کو کہیں کہ آپ چوز کریں، آپ کو منتخب کرنے کی آزادی ہے، آپ کو آپ کے لیے فرض بنتا ہے کہ آپ عوام کے سامنے صحیح امیدواروں کو لائیں اور پھر عوام پہ چھوڑیں کہ وہ صحیح امیدواروں میں سے کس کو منتخب کرتے ہیں، اگر آپ نے عوام کے سامنے ایسے امیدوار لائے جن کے معاملات صحیح نہیں ہیں، جو اپنے بلے ادا نہیں کرتے ہیں، جو جنہوں نے لونز معاف کروائے ہیں، اس طرح کی بےضابطگیاں چوری چکارے، تو یہ کوئی اچھا دسترخوان بچھانا تو نہیں ہوا نا، آپ نے کیا رکھا ہے اپنے مہمان کے سامنے، اس کو کیا منتخب کرنا ہے، اس کو یہ تو چوائس بٹوین ڈیول اینڈ ڈیپ سی اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک طرف بھی خسارہ دوسری طرف بھی خسارہ، تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ کوئی ایسا یعنی اگر آپ اس کو سطحیت سے آگے ذرا دیکھیں اور مقصدیت کی سطح پہ دیکھیں تو میں ذرا اس کو بہت ہی روزی اور خوشائند اور دل نظر اور دل کو خوش کرنے والی چیز نہیں سمجھتا۔
بہت شکریہ، میں پھر آؤں گا آپ کی خدمت میں۔ اس وقت چلتے ہیں سیدھے کراچی جہاں ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی رہنما سید حیدر عباس رضوی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
حیدر عباس صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بیان آیا ہے کہ کراچی کی سطح پر ہم شفاف اور آزادانہ انتخابات کرانے میں ناکام رہے ہیں، کیا انتخابی نتائج پر اس بیان کا اثر پڑ سکتا ہے؟
نہیں، کمیشن نے ایسا نہیں،
ہلو،
حلقوں میں پولنگ آفیسر
ہاں بظاہر ایسا ہے کہ ٹیلی فون لائن کی کچھ خرابی، ہمارے ساتھی کوشش کریں گے کہ دوبارہ ان سے رابطہ کریں، اور ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ بیان انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ بھی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے تعلق سے جہاں 70 لاکھ ووٹر ہے اور جہاں قومی اسمبلی کی تقریباً 20 نشستیں ہیں اور اس سے کہیں زیادہ ظاہر ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں ہیں۔ تنویر حسین صاحب، ظاہر ہے کہ یہ بیان آپ کے بھی پیش نظر ہوگا، کیا کہا جا رہا ہے اور کیا تبصرے ہو رہے ہیں پاکستان میں اس وقت؟
الیکشن کمیشن کے کراچی کے حالات کی وجہ سے جو وہاں صورتحال جو ہے وہ خاصی پریشان ہوں صبح سے، اب کیا وجوہات ہیں یہ فیکٹس سامنے نہیں آئے، لیکن ابھی تک بہت سارے حلقوں میں ان کے پولنگ ایجنٹ نہیں آئے تھے، جس کی وجہ سے وقت میں بھی توسیع کی گئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن بہتر سمجھتا ہے کہ جو اس نے اگر یہ بیان دیا ہے تو اس کی پاس بھی اس طرح کے ٹھوس وجوہات ہوں گی۔
جی تنویر صاحب، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے
اسلامی
تنویر صاحب، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، حیدرآباد صاحب دوبارہ لائن پر ہیں، میں ان سے جو میں نے سوال کیا تھا، جی حیدرآباد صاحب معاف کیجیے گا لائن کچھ خراب ہو گئی تھی، میں نے جو سوال کیا تھا تکرار مقررات سے بچنے کے لیے آپ اس کا جواب دیں گے۔
الیکشن کمیشن نے ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا، الیکشن کمیشن نے یہ ضرور کہا ہے کہ کچھ مس مینجمنٹ ہوئی ہے ان سے کراچی کے کچھ حلقوں میں، مگر ایسی کوئی بات نہیں کہ الیکشن کمیشن میں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ناکام ہوئے یا ایسی کوئی بات ہے، اور اسی لیے وہاں پر حلقوں میں ٹائم بڑھایا گیا ہے۔
جی دیکھیں، اس میں میرے سامنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں، اور خود روزنامہ جنگ جو موقر ہے آن لائن، اس کی خبر ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعتراف کیا ہے کہ کراچی میں شفاف اور آزادانہ انتخابات کرانے میں ہم ناکام رہے ہیں اور اس کے حقائق ہم قوم کے سامنے رکھیں گے۔
دیکھیے، الیکشن کمیشن کے جو سیکرٹری ہیں ان کی پوری تقریر میں نے بھی سنی ہے، اور اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی گئی۔ باقی اگر کراچی میں یا پاکستان کے کسی جریدے کا حوالہ دے کر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کی صحت کا ذمہ دار وہ ادارہ ہے، آپ نہیں ہے۔
جی جی، بہت شکریہ آپ کا۔ مجموعی طور پر آج کراچی میں پولنگ گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں آپ نے کیسی دیکھی؟
मुझे काफी मिसमैनेज नजर आया है, खासतौर पर कराची के 6 हलकों में, और वहां पर चीजें मिसमैनेजमेंट का शिकार हुई, और जाहिर है उसकी एक वजह कराची में मौजूद एक खौफ व हिरास की सूरत हाल थी, और खास तौर पर उन इलाकों में जहां पर अब भी जो है वो सूरत हाल कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मिसाल के तौर पर लियारी में जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, फिर पीएस जो एनए 253 है वहां पर भी जाहिर है कि पूरे तालिबान का असल नफूज अपनी जगह पर मौजूद है, हल्का 240, और इसी तरह के दीगर इलाके हैं जहां पर पोलिंग का अमला जाने के लिए तैयार नहीं था।
जी हैदराबाद साहब, जमात इस्लामी ने कराची की सतह पर इंतखाबात का बायकाट किया, महाजिर कौमी मूवमेंट ने, और साफ लफ्जों में ना सही लेकिन बहरहाल आपकी तरफ उनका इशारा था, यानी आपकी जमात की तरफ कि उनकी तरफ उनके जरिए मुदाखलत की गई इंतखाबी अमल में, और ये भी कहा गया कि बाज पोलिंग स्टेशनों पर तो इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई कि वहाँ सिर्फ बैलेट पेपर जो थे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ही थे, क्या कहेंगे आप?
जमात इस्लामी या मुहाजिर कौमी मूवमेंट किसको मुरीद इल्जाम ठहरा सकते हैं? अगर उनको पूरे पाकिस्तान से कोई नशिस्त नहीं मिलती जमात इस्लामी को, तो क्या उसकी जिम्मेदार भी एमक्यूएम ही होगी, या वो वहां पर अपनी शिकस्त फाश को तस्लीम करेंगे? उनके पास और कोई हरबा है नहीं। कराची वाले एक अरसे से मुंतजर थे कि यहाँ पर जो इस्लामी रुजत पसंद जमाते और खासतौर पर तालिबान के जो दस्य राष्ट्र हैं उनको कराची के इतदाल पसंद अवाम शिकस्त दे। उन्होंने इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करके कराची वालों का ये ख्वाब शर्मिंदा काबिर होने नहीं दिया।
जी हैदराबाद साहब, आप और आपकी जमात के दीगर कायदीन ये कहते रहे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस बार मुल्क की और कौमी सतह की जमात बनकर उभरेगी, हैदराबाद, नवाब शाह, सखर और कराची के अलावा भी कहीं से आपको सीटें मिलने की उम्मीद है?
हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि साउथ पंजाब में, हमने फोकस किया है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, हम अल्लाह की जात से पुरउम्मीद है।
जी कल का सूरज जब तुलू होगा आप क्या समझते हैं, आप किसके साथ बैठेंगे?
देखिए ये सवाल आपका बहुत प्री मच्योर है, क्योंकि कल का सूरज तुलू होने के साथ साथ चीजें तय नहीं हो जाएंगी, और कल का सूरज तुलू होने के बाद भी चीजें वजाहत के साथ किसी के सामने नहीं आ पाएंगी।
बहुत शुक्रिया, आपने इस मसरूफियत के बावजूद अपना कीमती वक्त हमें इनायत किया, हम इस वक्त की आपकी मसरूफियत समझते हैं, नवाजिश आपकी, शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया जनाब,
शुक्रिया जी। तनवीर हुसैन साहब माफ़ कीजिएगा, हमने आपकी गुफ्तगू दरमियान से रोक दी थी, आप हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं। जी हाँ तनवीर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आपने अपने इब्तदाइये में और अपने पहली गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुंतखब हुकूमत ने 5 साल की मुद्दत अपनी कानूनी पूरी की, उसके बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये जो 5 साल की मुद्दत पूरी की गई, अवाम के जोश व वलवले में क्या इसका भी असर रहा है, और ये भी एक वजह बनी जो अवाम इतनी बड़ी तादाद में, हालांकि अब तक फ़ीसद का ऐलान नहीं किया गया कि कितने फ़ीसद टर्नआउट रहा है, और हो चुका होगा मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं स्टूडियो में हूँ, तो बहरहाल जो भारी तादाद में लोग निकले वोट देने के लिए, तो क्या ये भी एक मुहर्रिक साबित हुआ कि लोगों को अब किसी हद तक जमहूरी अमल पर यकीन होता चला है?
देखिए जी इस ये भी एक रीज़न तो हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये था कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है जो पीपल्स पार्टी की मखलूत थी, जिसमें एमक्यूएम, एएनपी और मौलाना फजल रहमान की जमात शामिल थी, मुस्लिम लीग काफ भी शामिल थी, लोगों की जो तवक्कुआत थी उस पर शायद पूरा नहीं उतर सकी, काफ़ी हद तक लोग जो है उससे मुतमिन नहीं थे, आम लोगों की ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली मैं समझता हूँ नहीं आई, महंगाई ने बहुत नुकसान पहुँचाया, इसके साथ साथ सुई गैस बिजली का बहरान, 5 साल में हुकूमत जो है ना इस पर उस तरह काबू नहीं पा सकी, और इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि लोगों को जो एक परेशानी थी उसको अपोजिशन ने पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया, और खुसूसन इमरान खान जो अपना फोकस नौजवानों की तरफ उन्होंने किया हुआ था, उन्होंने इस सारी सूरत हाल से भरपूर फ़ायदा उठाया कि लोगों को ऑर्गेनाइज किया। दूसरी बात ये थी कि एक जोश और बलबले की एक और वजह यह है कि इससे पहले जो वोटर की तकसीम थी वो पीपल्स पार्टी के हमायत और उसकी मुखालफत में भी थी, और वो जो एक रद्द अमल था वो मुस्लिम लीग नून की शक्ल में ऑर्गेनाइज था। अब की बार ये हुआ कि मुस्लिम लीग भी चूंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में हुकूमत कर रही थी, तो वहाँ भी पंजाब के अंदर भी शायद उस तरह वो डिलीवर नहीं कर सकी और कोई इतना बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हम देख पाए। कुछ स्कीमों की वजह से उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया, लेकिन जाहिर है बहुत सारे पैदावार जो है पंजाब के अंदर से भी होती है, वो भी शायद इतना डिलीवर नहीं कर सकी। और एक तबकाती जो निज़ाम है उसको पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग ने मेंटेन रखा। मसलन जिस तरह मैं अगर ये कहूँ कि यौम मई पे नवाज शरीफ ताजरों से मुलाकात की, मजदूरों से मुखातब नहीं हुए, तो एक तबकाती जो निज़ाम था या तबकाती उनकी सियासत बड़ी वाजे खुल के सामने आई
जी।
इसके मुकाबले में इमरान खान जो एक इस सारे जो रद्द अमल था उसको उसने बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, और एक वो तबका जो शायद इतना ज़्यादा इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता था उसको भी बाहर लेकर आया, जिसे हम कहते हैं जी एक एलीट तबका है, तो वो लोग भी सामने आए। मैं देख रहा था इस्लामाबाद की सूरत हाल, वहाँ पे बहुत सारे जहाँ गरीब लोग भी उनके साथ थे, वहाँ एक बड़ी वो तबका लैंड क्रूज़र वाला तबका भी इमरान खान को साथ उसके साथ सामने आए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मौजूदा हुकूमत की जो एक लोगों के एक्सपेक्टेशन से उस पर पूरा नहीं उतर सकी, और उसके नतीजे में ये एक जोश व खरोश भी आया, और लोग ये चाहते हैं कि शायद इमरान खान की शक्ल में इस मुल्क के अंदर एक तब्दीली आए। मैं समझता हूँ इमरान खान का जो नारा है तब्दीली का वो रद्द अमल पे है।
जी,
इस सारी
तनवीर साहब इमरान खान का जिक्र आया,
करने जा रहा हूँ नया पाकिस्तान बनाने जा रहा हूँ
जी।
तनवीर साहब मैं समझता हूँ कि
इमरान खान साहब का आपने जिक्र किया, मैं अगला सवाल भी आप ही से करना चाहूँगा। इमरान खान साहब के बारे में जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं खासतौर पर पंजाब में यानी नून लीग के कायद, उनका कहना है कि उनको तो इतनी सीटें नहीं मिल सकेंगी। हाँ, वो जो इस बड़े पैमाने पर मैदान में आए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बी टीम का किरदार ज़रूर अदा करेंगे और हमारे वोट काट कर फ़ायदा पीपल्स पार्टी को पहुँचाएंगे, तो क्या ऐसा ही है? और आमतौर पर वहाँ का मीडिया ज़रा बिला वो लोग यही सोचते हैं।
देखिए ये फैक्टर अपनी जगह मौजूद है कि पीपल्स पार्टी के जो वोटर है उसके अंदर दो चीज़ें आम तौर पे पाई जाती हैं, मैंने जो ज़ाती तौर पे असेस किया है, वो या तो पीपल्स पार्टी को वोट देगा या खामोश हो जाता है अक्सर। ये इससे पहले तो उसकी प्रैक्टिस ये रही है, अब की बार ये हुआ है कि बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोग के अंदर से कुछ लोग जो हैं पीटीआई की तरफ चले गए, इमरान खान की तरफ उनका रुझान बना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मुस्लिम।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में तनवीर साहब।
इत्तेफाक नहीं करते, जाहिर है जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ जो लोग रहे हैं तो उसके पीपल पार्टी का तो हमेशा एक महरूम तबकों की नुमाइंदगी की बात की है, मुल्क के अंदर से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के खात्मे की बात की है, ट्रेड यूनियन की बात की है, इसी तरह मजदूरों के हकूक की बात की है, तो वो उसका जो एक माइंड सेट होता है कि मुल्क के अंदर एक जो गरीब तबका है उसकी अंदर एक सोच होती है, तो वो हमेशा उमरा या इस तरह के जो सरमायादार या जागीरदार या ताजर तबके के करीब वो लोग नहीं जाते।
बहुत शुक्रिया, मैं फिर आ जाऊंगा आपकी खिदमत में तनवीर साहब।
एक ऑप्शन उनके पास थी, कुछ लोग उस तरफ चले गए।
जी बहुत शुक्रिया, चलते हैं इस वक्त लाहौर, पंजाब का सदर मकाम, जहां के बारे में कहा जाता है कि इस्लामाबाद के ऐवानों का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है। वहां पर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर और सरकर्दा तर्ज नगार प्रोफेसर मुगीसुद्दीन शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
जी प्रोफेसर मुगीसुद्दीन शेख साहब, ये आमतौर पर कहा जाता है और हकीकत भी यही है कि जिसने पंजाब में मेजॉरिटी हासिल की कौमी असम्बलियों की, उसने गोया इस्लामाबाद में भी हुकूमत बनाई। आपको आज का दिन कैसा लगा?
ये आज का दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में एक तारीख साज दिन है जिसमें एक तवील अरसे के बाद वोटर्स में जोश व खरोश देखा गया है और एक बड़ा ही कांटेदार मुकाबला जो है वो लाहौर शहर में देखने को मिला है बड़े तवील अरसे तक, और ये ऐसा कंफ्यूजन रही है कल रात तक कि कौन सी पार्टी जो है वो डोमिनेट करेगी, लेकिन आज सूरत हाल जो थी वो काफी अपसेटिंग रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए, खासतौर पर शहर लाहौर में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का गढ़ है।
जी तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बार कम से कम पंजाब की सतह पर सबसे ज्यादा सीटें हासिल करेगी?
देखिए जी, मुस्लिम लीग ने जो इन्होंने कैलकुलेशन की थी वो तो बहुत ज्यादा थी। ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि पीटीआई इतना सख्त कंपटीशन करेगी, लेकिन पंजाब के अंदर अब भी रूरल एरियाज के अंदर अगर देखा जाए तो सीटें जो है वो मुस्लिम लीग की मेजोरिटी ही आने के इम्कान है। और चूंकि मुस्लिम लीग ने बड़ा फोकस तरीके से काम किया हुआ था, पुरानी जमात है, इलेक्टेबल्स भी हैं, तंजीम भी है, और इनके लोगों ने जो काम वाम किए हैं वो इसको कैश करवाने की सलाहियत भी रखते हैं, तो इनके जेहन में ये है कि जी पाकिस्तान का 60% जो है वो पंजाब है, तो पंजाब पर इनकी हुकूमत रहनी चाहिए। लिहाजा इन्होंने काफी फोकस काम किया है प्रोविंशियल असेंबली के लेवल पर। नेशनल असेंबली लेवल पर इन्हें सेटबैक होने के इम्कान हैं, और मेरा ये ख्याल है कि 48% और 52% का फर्क होगा पीटीआई में और मुस्लिम लीग नून में, खासतौर पर पंजाब की सरजमीन में।
जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप कहां पर देख रहे हैं, जिसने कम से कम पंजाब में तो बजाहिर कोई बड़ा जलसा नहीं किया, उसकी पोजीशन कैसी जा रही है आपके ख्याल में?
हाँ जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसने अपनी पॉकेट्स में ही अपने आप को महदूद रखा है, बल्कि उनकी बात बड़ी बड़ी शख्सियात भी जो है वो खतरे में है। मतलब कमरुजमा कह रहा था जो वजीर इतलात और बड़े अच्छे उनके ओपनिंग प्लेयर थे और बड़े वोकल लीडर थे, उनकी सीट भी खतरे में है, और सादिक वजीर आजम जो है वो भी मुश्किल में फंसे हुए हैं। उन्होंने अरबों रुपए के तरक्याती काम करवाए, इनके कोई इम्कान नहीं है, लिहाजा पीपल्स पार्टी जो है वो तो बैक सीट पर चली गई है। लेकिन पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर जो है वो अपनी उसी तरह पोजीशन को इंटैक्ट रखे हुए है।
क्या इमरान खान साहब की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब में फायदा नहीं पहुंचेगा आपके ख्याल में?
मैं नहीं समझता, इसलिए कि इमरान खान जो है किसी सूरत में भी असेंबली के अंदर ना मुस्लिम लीग नून से इत्याद करेगा और ना पीपल्स पार्टी से करेगा। हाँ, तो इमरान खान
नहीं, मैं वोटों की तकसीम के ताल्लुक से पूछ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है उसमें हाथ डालकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा नहीं पहुंचाएंगे?
नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि हो ये रहा है कि पीपल्स पार्टी इतनी मायूस हुई है, वो पीपल्स पार्टी से मायूस होकर पीटीआई को वोट दे रहा है, यानी उनकी नंबर टू च्वाइस जो है वो पीटीआई बन गई है।
जी, बहुत शुक्रिया, आप टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। चलते हैं इस वक्त फिर एक बार लंदन स्टूडियो, जहां पर मौजूद है डॉक्टर इनायतुल्लाह अंद्राबी साहब। डॉक्टर साहब, माफ़ कीजिएगा, काफ़ी देर तक आप मुंतजिर हैं, कुछ छोटे छोटे सवाल हमने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में कटा लें। मैं आपसे जाहिर है कि वसी तनाजुर में जानना चाहूँगा, तालिबान ने जो ये सब कुछ किया, क्या उन्होंने 500 से लेकर 600 अफराद तक इंतखाबी मुहिम के दौरान जो लोगों का खून बहाया है, क्या उनको तशफी हो गई होगी और वो इस हरकत को या अपने इस तरह के दहशत गर्दाना इकदाम को अपने लिए कामयाबी करार दे सकते हैं?
देखिए, तालिबान का जो इलेक्शन में रोल रहा उसमें एक स्ट्रेटजी आपको नजर आ सकती है, जिसकी तरफ मीडिया में भी कई बार उस पर उसकी तरफ इशारा किया गया और उसमें कुछ वजन लग रहा है। स्ट्रेटजी तो ये थी कि जो बहुत ही आउटराइट और बहुत ही खुले अंदाज में पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी के मुखालिफ हैं और बाय बिलीफ यानी बिल्कुल उसूलन मुखालिफ हैं, तो उनका उनका ज़्यादा निशाना वही लोग रहे और उनकी इलेक्शन कैंपेन्स रही। अब वो लोग खुद क्या हैं, उनका नजरिया क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, जैसे पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी वगैरह है और ऐसे दूसरे सेकुलर अनासिर हैं, अब वो क्या हैं वो यहाँ पे उस पर बहस नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि अगर किसी को उन्होंने इन चीज़ों को के उसूली अपने मुखालिफ समझा तो उन्होंने उनको एक बहुत ख़ास अंदाज में टारगेट बनाया, और ऐसे लोगों से जिनके पास वो समझते हैं कि उनका नरम गोशा है उनको उनको कुछ हाथ नहीं लगाया। एक स्ट्रेटजी ये लग रही है कि वो शायद ये समझते हैं कि इंतखाबात के नतीजे में उनके जो जिन यानी ऐसे फोर्सेस जो एक नरम गोशा रखते हैं, अगर वो फोर्सेस इलेक्शन में कामयाब होकर पार्लियामेंट तक पहुंच जाए तो एक प्रो तालिबान हुकूमत शायद कायम हो। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जैसे ये कहा जाता है, यानी ये कोई ये कयास आ रहा है, यहाँ काफी वक्त से चल रही है कि वो नवाज शरीफ को आगे करना चाहते हैं, फिर नवाज शरीफ अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलाएगा और पाकिस्तान में तालिबान टाइप का एक लेजिस्लेशन होगा कि अब यहाँ एक इस्लाम होगा और अमीरुल मोमिनीन और वही चीजें। तो तालिबान की इस सारी जो उनकी दहशतगर्दी रही इंतखाबात के दौरान, उसमें एक स्ट्रेटजी आपको नजर आएगी। अब ये कि उन्होंने ये भी कहा था कि कोई इलेक्शन में हिस्सा, कोई वोट डालने ना जाए, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना वो थर्ट इंप्लीमेंट नहीं किया, वो उन्होंने लोगों को जाने दिया। लेकिन जहां तक सेकुलर अनासिर को चेक में रखना है और उनको ज्यादा सरगर्मी करने न देना है, तो वो उनने इंप्लीमेंट किया और वो उनने करके दिखाया। तो ज्यादा एक स्ट्रेटजी उसमें मुझे नजर आ रही है।
जी प्रोफेसर मुगीसुद्दीन शेख साहब, कहा यह जा रहा था मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, खुद तालिबान की तरफ से, कि हम उन जमातों को जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं और जो अमेरिका की जंग में शरीक हैं, इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेने देंगे या उनको नहीं जीतने देंगे या उनके इंतखाबी जलसे व जुलूस नहीं होने देंगे। और जो सूरत हाल रही इंतखाबी मुहिम के दौरान, आपने मुझसे बेहतर देखा और समझा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में जलसा भी न कर पाई, तो क्या गारंटी है कि अगर फर्ज किया लिया जाए कि नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं, जिनको तालिबान ने अपना गारंटर भी करार दिया था, उनको जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक इंसाफ को, तो क्या बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी फॉरेन पॉलिसी में, खासतौर पर अमेरिका के ताल्लुक से नवाज शरीफ साहब की मुमकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी में?
इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कमेंट करना चाहूंगा कि ये देखें, मैं आपको ये अर्ज करूं कि पाकिस्तान के आवाम के अंदर, मैं आवाम की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के आवाम के अंदर अमरीका के खिलाफ भी उतने ही जज्बात पाए जाते हैं जितने तालिबान के खिलाफ पाए जाते हैं। यानी जो लोग अमेरिका के मुखालिफ हैं, ये जहन में रखें कि वो तालिबान के हामी नहीं है, जरूरी नहीं कि वो तालिबान के हामी भी हों, सिवाय चंद मजहबी लोगों के। लिहाजा ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स हैं वो एंटी अमेरिकन हैं, और ओवरऑल पाकिस्तान का जो कल्चर है वो बड़ा मॉडरेट इस्लामिक कल्चर है मेजॉरिटी का, और वो भी एंटी तालिबान है, वो तालिबान के मॉडल को तस्लीम नहीं करते। लिहाजा ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसके अंदर ये डिवाइड नहीं है कि प्रो तालिबान हुकूमत आएगी या प्रो तालिबान प्राइम मिनिस्टर आएगा या एंटी तालिबान प्राइम मिनिस्टर आएगा, ऐसी कोई डिवाइड नहीं है। ये डिवाइड इन तीनों पार्टियों ने
प्रोफेसर साहब
जरूर कोशिश की है।
प्रोफेसर साहब आम तासुर ये था, प्रोफेसर साहब आम तासुर ये था इंतखाबी मुहिम के दौरान, और कहा भी जा रहा था खुद पाकिस्तान के अखबारात और जराइद और जराए बलाग में भी, कि चूंकि नवाज शरीफ साहब और पीटीआई तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और दीगर जमातें हुकूमत में नहीं थी, इन्होंने अमेरिका का साथ इस तरह से नहीं दिया चूंकि हुकूमत में नहीं थी, इसलिए तालिबान इनको निशाना नहीं बना रहे। यानी जिनको निशाना बनाया जा रहा था उनका जुर्म ये था कि वो अमेरिका के साथ थी। तो क्या अब मेरा सवाल यह है कि क्या अगर नवाज शरीफ साहब मुमकिन तौर पर हुकूमत में आ जाते हैं, उनकी जमात हुकूमत में आ जाती, तो क्या कोई यू टर्न हो जाएगा और तालिबान अगर फर्ज करें यू टर्न ना लें, तो क्या तालिबान की जो आज पॉलिसी है, जो आज हिकमत अमली है, वही बाकी रहेगी?
देखिए मेरी बात सुने कि एक तो बात ये जहन में रखनी चाहिए कि जहाँ तक खारजा पॉलिसी का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खारजा पॉलिसी में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ इज वेरी फ्लेक्सिबल पर्सन और अमेरिकन के साथ डील करना चाहते हैं, और नवाज शरीफ भी अमेरिकन के साथ एडजस्टेबल पर्सनैलिटी है। ये हमारी खाम ख्याली है कि ये अमेरिका के साथ खड़े हैं और ये अमेरिका के मुखालिफ खड़े हैं, ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। जब ये पावर में आएंगे ये सारे के सारे जो है ना अमेरिकन पॉलिसी के साथ इस बावकार तरीके से एडजस्ट करना जानते हैं। हाँ ये जरूर है कि इमरान खान का स्टैंड जरा ज्यादा नेशनलिस्टिक होगा एज कम्पेयर टू नवाज शरीफ।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर आऊँगा आपकी खिदमत में। तनवीर हुसैन साहब, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगु सुनी, आइंदा की जो सूरत हाल होगी खासतौर पर फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम दहशतगर्दी का खात्मा कर देंगे और मुख्तलिफ उसके लिए हिकमत अमली अपनाएंगे, तो कितनी हम खुशफहमी रखें अगर नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आ जाते हैं, ये तो कल मालूम होगा। जी
नवाज शरीफ साहब पहले भी हुकूमत में रहे हैं, कोई अमेरिका के साथ उन्होंने जंग नहीं की है, ना ही उनसे कोई बिगाड़ने की कोशिश की है, उनके लिए कंफर्टेबल रहे हैं पहले भी, ठीक है नहीं? तो ऐसी कोई बड़ी मुझे तब्दीली नज़र नहीं आ रही अभी तो, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि उनकी पोजीशन क्या है। पहले 2/3 मेजॉरिटी थी तो उस ज़माने में भी कोई इतना इनकलाबी इकदाम नहीं कर रहे थे। मसला ये है कि वो जिस तबके को की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो उसी के मुताबिक मुल्क की पॉलिसीज बनाते हैं, और कभी भी कोई सरमादार सोच रखने वाला आदमी जो है वो अमेरिका के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि मैं नहीं समझता कि उनके आने के बाद कोई पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में इतना बड़ा कोई तब्दीली आएगी, और पहले तो इलेक्शन से के रिज़ल्ट से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मुस्तकबिल का नक्शा क्या बनने जा रहा है। अभी तो बहुत ज़्यादा जो पहले के मुकाबले में जो एक तब्दीली आ रही है वो तो 3 जमातों के दरमियान जो है वो सीटों की तकसीम होगी, और उसका नतीजा जब तक नहीं आता कोई मुस्तकबिल के बारे में मैं समझता हूँ कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। लेकिन माजी को देखते हुए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी इनकलाबी तब्दीली फॉरेन पॉलिसी में मियां नवाज शरीफ सब ले आएंगे।
तो फिर मुल्क के अंदर जो तालिबान ये दावा कर रहे हैं कि हम उन पर हमला कर रहे हैं जो अमरीका के साथ हैं, तो आइंदा उनकी हिकमत अमली क्या होगी?
देखिए जी, तालिबान का एक अपना एजेंडा है, अगर अमेरिका की मुखालफत ही उनकी होती तो फिर जरदारी साहब ने गवादर पोर्ट दिया ईरान के साथ, गैस पाइपलाइन किया, तो उनको तो चाहिए था कि जरदारी साहब के साथ खड़े हो जाते कि अमेरिका की मुखालफत में ये 2 बड़े फैसले किए जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे भी इनके बहुत दूरस नतायज होंगे। पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो सकता है, ईरान के साथ एक नए मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद रखी गई है जिनके खिलाफ अमेरिका जो है वो किसी सूरत उसका बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं नहीं समझता कि कोई तालिबान जो है वो अमेरिका के इतनी मुखालफत करेंगे और इस तरह की सूरत हाल होगी। उनके अपना एक एजेंडा है और उनसे उसके मुताबिक वो काम करें, और बहुत सारे उनके पस पर्दा जो मकासद हैं वो उनके अपने एजेंडे के मुताबिक है, मुझे कोई इस तरह की बात नज़र नहीं आ रही।
प्रोफेसर मुगीसुद्दीन शेख साहब, मेरे पास 1.5 मिनट का वक्त बचा है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आज इलेक्शन और पोलिंग का अमल अंजाम पाया, जाहिर है कि नतज कल तक आएंगे, तो जिस जोश खरोश और जोश जज्बे और वलवले और हिम्मत हौसले के साथ आवाम वोट देने के लिए निकले, तो इसमें आप क्रेडिट किस वक्त देते हैं, आवाम को, मीडिया को, सियासी जमातों को, फौज को, या सबको?
सबको जी, सबको। पाकिस्तान के आवाम को बिलखसूस को बड़ी रेजिलियंस है पाकिस्तानी आवाम के अंदर, और जो जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी भी जरूरत को दाद देनी चाहिए जिन्होंने हिम्मत करके इनको निकाला है, और मीडिया का तो बड़ा ही अहम किरदार है सिलसिले के अंदर कि मीडिया ने बाकायदा इलेक्शन वाले दिन लोगों को वेकअप कॉल दिए कि अपने बिस्तर में मत बैठें, बाहर आएं और अपना किरदार अदा करें। तो मैं ये समझता हूं, और इसमें फौज का किरदार भी सिवाय इसके कराची के मसले पर, मैं समझता हूं कि फौज और अदलिया और इंतजामिया इनकी नाहली और इलेक्शन कमीशन की नाहली सामने आई है, जिसके नतीजे में लगता ये है कि कराची जैसे शहर जो बनाए मौजब लोगों का शहर है वहाँ पर गैर जमहूरी अंदाज इख्तियार किया जाता है एक तवील अरसे से, और एक पार्टी को उन्होंने पूरा वॉकओवर दे रखा है कि वो जिस तरह की चाहे गुंडागर्दी करके दूसरी जमातों पर जमहूरी अमल के रस्ते में रुकावट डाल दे। ये अफसोसनाक है। मेरे ख्याल में पंजाब जो है वो जमहूरी अमल के हवाले से, कराची के लोगों के हवाले से आगे निकल चुका है
जी। एक जुमले में जवाब दीजिएगा, क्या आज के दिन को पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम की जानिब एक मजबूत कदम के तौर पर देखा जा सकता है?
मैं उम्मीद करता हूँ।
बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, और हम अपने लंदन स्टूडियो के मेहमान से माजरत चाहते हैं, वक्त खत्म हो चुका है। नाज़रीन, बहरहाल पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, अब वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है, और आज रात गए और देर रात तक या कल सुबह तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, और उसके बाद फिर हुकूमत साजी और जोड़ तोड़ का अगर हंग पार्लियामेंट होती है तो अमल भी शुरू हो जाएगा। बहरहाल कल ये बात वाज़ह हो जाएगी किसी हद तक या खासी हद तक कि अब पाकिस्तान के ऐवान इख्तदार में कौन बैठेगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।